ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। दिल्ली में लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के अंतर्गत आज विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र भरा। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया और दिल्ली की एक अदालत ने गृहमंत्री अमित शाह के वीडियो से कथित रूप से छेड़छाड़ मामले में अरुण रेड्डी को दिल्ली पुलिस की 3 दिन की हिरासत में भेजा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं लवली निगम। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। नई दिल्ली में पार्टी महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की उपस्थिति में श्री लवली ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। श्री लवली ने प्रेस वार्ता में कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में सशक्त सरकार बनाएंगे।
हम आज 5 वरिष्ठ साथी जरूर जो है हम लोग शामिल हुए, लेकिन बहुत बड़ा लंबा काफिला है जो मजबूती के साथ चाहता है कि इस देश में जो है एक सशक्त सरकार बने और दिल्ली में जिस तरीके का माहौल पिछले 7-8 सालों में हुआ है उस माहौल से दिल्ली के लोगों को छुटकारा पाने के लिए हमसे जो योगदान बनेगा वो हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पे उस योगदान में जो कुछ हमसे बन पाएगा हम लोग करेंगे।
दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान, कांग्रेस पार्टी के पूर्व सचिव नसीब सिंह, पूर्व विधायक नीरज बसोया, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष अमित मलिक भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के तहत आज विभिन्न राजनीतिक दलों के 71 सदस्यों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन पर्चा भरने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या अब 141 हो गई है। एक रिपोर्ट।
आम आदमी पार्टी के 3 और कांग्रेस के 1 उम्मीदवार ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों में पूर्वी दिल्ली सीट से कुलदीप कुमार, नई दिल्ली सीट से सोमनाथ भारती और पश्चिमी दिल्ली सीट से महाबल मिश्रा शामिल हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश अग्रवाल ने चांदनी चौक सीट से अपना पर्चा भरा। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले सभी उम्मीदवारों ने अपनी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ रोड शो किया। भाजपा ने चांदनी चौक सीट पर प्रवीण खंडेलवाल, नई दिल्ली सीट पर बासुनी स्वराज, पूर्व दिल्ली सीट पर हर्ष मल्होत्रा और पश्चिमी दिल्ली सीट पर कमलजीत सहरावत को चुनाव मैदान में उतारा है। पूर्व दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने अभी तक अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। सोमवार को कन्हैया कुमार के पर्चा भरने की संभावना है। कन्हैया कुमार भाजपा के मनोज तिवारी के सामने चुनाव मैदान में हैं। दिल्ली में भाजपा और इंडी गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है। राजधानी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। प्रादेशिक समाचार के लिए रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
दिल्ली में नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 मई है और लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के अंतर्गत मतदान 25 मई को होगा। वोटों की गिनती 4 जून को संपन्न होगी। दिल्ली निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने अपनी स्वीप पहल के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आज राजधानी के नरेला क्षेत्र में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कई गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों को मतदान का महत्व बताया गया। निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा विकासपुरी और छतरपुर क्षेत्र के स्कूलों में भी निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इस दौरान छात्रों को चुनाव और मतदान की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके अलावा पटेल नगर क्षेत्र में भी कई गतिविधियों द्वारा लोगों को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। दिल्ली निर्वाचन कार्यालय ने नागरिकों को मतदान के प्रति जागरूक करने और चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए राजधानी में स्वीप अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के अंतर्गत दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया मंचों पर भी नागरिकों को मतदान संबंधी जानकारी प्रदान की जा रही है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए उसने अब तक का सबसे बड़ा जागरूकता और जनसंपर्क अभियान चलाया है। आयोग ने बताया कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% मतदान हुआ। यह देश में सर्वश्रेष्ठ मतदान प्रतिशत में से एक है, लेकिन 2019 के चुनाव से कम है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
देश में लोकसभा चुनाव परिदृश्य को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के 75 सदस्य भारत आए हैं। एक रिपोर्ट।
अपनी यात्रा के दौरान प्रतिनिधि आज से शुरू होने वाले 6 दिन के कार्यक्रम में भाग लेंगे। उच्चतम मानकों के साथ आम चुनाव कराने की प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए निर्वाचन आयोग ने इन प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है। आयोग ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य विदेशी चुनाव प्रबंधन निकायों को भारत की चुनावी प्रणाली की बारीकियों और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र द्वारा उपयोग की जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं से परिचित कराना है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉ सुखबीर सिंह संधू कल प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। इसके पश्चात ये प्रतिनिधि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव और संबंधित तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए 6 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। कार्यक्रम इस महीने की 9 तारीख को समाप्त होगा। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से अमन यादव।
दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वीडियो से कथित रूप से छेड़छाड़ मामले में आज अरुण रेड्डी को दिल्ली पुलिस की 3 दिन की हिरासत में भेज दिया। अरुण रेड्डी कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया का राष्ट्रीय समन्वयक है और स्पिरिट ऑफ कांग्रेस एक्स अकाउंट का संचालन भी करता है। तेलंगाना प्रदेश भाजपा ने मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्य प्रमुख रेवंत रेड्डी के खिलाफ साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की थी। इसमें अमित शाह के भाषण के साथ छेड़छाड़ करने और उसमें बदलाव करने का आरोप लगाया गया था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को भी तलब किया था। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए राजधानी के द्वारका और जनकपुरी इलाके से 3 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 7.5 किलोग्राम से अधिक मात्रा में उच्च गुणवत्ता की हेरोइन जब्त की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 38.5 करोड़ रूपये आंकी गई है। विशेष शाखा की टीम ने बताया है कि पकड़े गए सभी आरोपी नाइजीरिया मूल के हैं। ये विदेशों से मादक पदार्थ लाकर दिल्ली और देश के अन्य राज्यों में आपूर्ति करते थे। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध हथियारों के एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए राजधानी के जहांगीरपुरी इलाके से कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों में हथियार बेचने, खरीदने और हथियारों की तस्करी करने वाले लोग शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से 12 अर्धस्वचालित पिस्तौल, 2 मैगजीन, 50 जिंदा कारतूस और अन्य अवैध सामग्री जब्त की है। पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 15 दिन के दौरान 50 से अधिक ठिकानों पर छापे मारकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह भी बताया कि पकड़े गए लोगों में से कुछ लोग सोशल मीडिया मंचों पर अवैध हथियारों का प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। दिल्ली में लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के अंतर्गत आज विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया और दिल्ली की एक अदालत ने गृह मंत्री अमित शाह के वीडियो से कथित रूप से छेड़छाड़ मामले में अरुण रेड्डी को दिल्ली पुलिस की 3 दिन की हिरासत में भेजा। हरियाणा के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने कहा है कि प्रवर्तन एजेंसियों ने आज 34.77 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। इस जब्ती में नकदी, शराब, नशीले पदार्थ, कीमती धातु और अन्य विभिन्न वस्तुएं शामिल हैं। ये जब्ती चुनावी प्रक्रिया के दौरान गैरकानूनी गतिविधियों को नियंत्रित करने के कड़े उपायों को रेखांकित करती है। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। पिछले महीने केंद्र सरकार ने 6 देशों बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका को 99,000 मीट्रिक टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी थी। पिछले वर्ष दिसंबर में रबी और खरीफ की फसलों में अनुमानित कमी के कारण प्याज की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। भारत का कहना है कि ऑनलाइन कट्टरपंथ वैश्विक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है। हाल ही में फ्रांस के लियोन में संपन्न नेशनल सेंटर ब्यूरो के प्रमुखों के इंटरपोल सम्मेलन में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद ने संगठित अपराध, आतंकवाद और उग्रवादी विचारधाराओं की सांठगांठ की चुनौतियों का उल्लेख किया। श्री सूद ने कहा कि आतंकवाद अच्छा और बुरा नहीं होता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कल आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ये परीक्षा देशभर के 557 शहरों और देश से बाहर 14 शहरों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होंगी। इस परीक्षा में 24 लाख से अधिक परीक्षार्थी भाग लेंगे। परीक्षा दिन में 2 बजे से शाम 5:20 तक चलेगी। एनटीए ने परीक्षार्थियों को डाउनलोड किए हुए प्रवेश पत्र ले जाने का निर्देश दिया है। प्रवेश पत्र में परीक्षार्थी की फोटो, हस्ताक्षर और रोल नंबर बारकोड होना अनिवार्य है। राजधानी में आज तेज धूप रहने से लोगों को काफी गर्मी महसूस हुई। आज का अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम रहते हुए 23.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना व्यक्त की है। कल का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ का 65वां स्थापना दिवस मनाने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थिक ने उत्कृष्टता और समुदाय से संपर्क के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता दिखाने के लिए कई शानदार कार्यक्रमों का आयोजन किया। उत्तरी सिक्किम के मनमोहक भूदृश्यों के बीच प्रोजेक्ट द स्वास्थिक ने दुर्गम तराइयों से होकर गुजरने वाली 9 कुशल बाइकरों की एक शानदार बाइक रैली का आयोजन किया। ये रैली सुप्रसिद्ध रंगमा पर्वत श्रेणी से शुरू होकर लाचेन, जीमा, दुखियाला पास और लाचुंग सहित कई सुंदर स्थानों से होकर गुजरेगी। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने पूर्वानुमान व्यक्त किया है कि केरल और तमिलनाडु के समुद्र में ऊंची लहरों का प्रकोप रह सकता है। ये स्थिति आज रात 11:30 बजे तक बनी रह सकती है। फिलहाल समुद्र की लहरें शांत हैं। केरल के समुद्री तट पर अभी तक ऊंची लहरें उठने की कोई खबर नहीं है। नीचे के तटीय क्षेत्रों में ऊंची लहरों के कारण समुद्र जल स्तर में वृद्धि होने की आशंका से केरल में रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को समुद्र तट पर नहीं जाने की सलाह दी गई है और अन्य गतिविधियों को भी रोकने का सुझाव दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। दिल्ली में लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के तहत आज विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया और दिल्ली की एक अदालत ने गृहमंत्री अमित शाह के वीडियो से कथित रूप से छेड़छाड़ मामले में अरुण रेड्डी को दिल्ली पुलिस की 3 दिन की हिरासत में भेज दिया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।